ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता सशक्तिकरण और शिकायत निवारण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त सचिव अनुपम मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल की थीम है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अनुपम मिश्रा स्टूडियो में मौजूद हैं। श्री मिश्रा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
इससे पहले कि हम आपके विभाग के कामकाज के बारे में विस्तार से बात करें, क्या आप हमें इस दिन को मनाने के महत्व के बारे में बता सकते हैं और कृपया हमें इस साल की थीम के बारे में भी थोड़ा विस्तार से समझाएं।
सर्वप्रथम आज हम आपके समस्त श्रोताओं को नेशनल कंज्यूमर डे 2024 की हार्दिक बधाइयां देते हैं। नेशनल कंज्यूमर डे हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसी दिन 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सर्वप्रथम प्रेसिडेंट के द्वारा उनका सिग्नेचर किया गया था एंड वो इस दिन इनैक्ट हुआ था। उसके बाद से हर दिन 24 दिसंबर को हम ये नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष का जो थीम है नेशनल कंज्यूमर डे का, वो है वर्चुअल हेयरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। तो ये थीम इसलिए रखा गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो आया, इनफैक्ट 1986 के एक्ट को रिपील करके, क्योंकि 1986 का एक्ट धीरे धीरे पुराना हो गया, कई नई चीजें आ गई जैसे ई कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिसको कि 1986 का एक्ट अच्छी तरह से उसको एड्रेस नहीं करता था, तो उस एक्ट को रिपील करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में नया लाया गया। इसमें कई चीजों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज थी वो थी ई फाइलिंग की व्यवस्था। ई फाइलिंग की व्यवस्था ये थी कि कंज्यूमर कहीं भी चाहे अपनी कोई भी शिकायत हो कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे कर सकता था। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसका प्रावधान किया गया। धीरे धीरे 2024 तक सभी राज्यों में जितने भी स्टेट कमीशन है और जितने डिस्ट्रिक्ट कमीशन है और नेशनल कमीशन में ये लागू कर दिया गया है। अब जो एक्ट की मुख्य धारणा थी कि कंज्यूमर को हैसल फ्री, स्पीडी, कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, तो ये कभी संभव है जब कंज्यूमर को अपने केसेस के निपटारण के लिए कंज्यूमर कमीशन में ना जाना पड़े, और ये हो सकता है डिजिटल एक्सेस के माध्यम से। तो इसमें एक है आपके लिए ई फाइलिंग की सुविधा की गई। दूसरा जो एक हमने प्रावधान जो शुरू किया, हमने पहल शुरू की 2024 में, वो थी सभी स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन को वर्चुअल हियरिंग के लिए वीसी फैसिलिटी देना हाइब्रिड मोड से। तो आज नेशनल कमीशन की 10 बेंचों में, स्टेट कमीशन की 35 जिलों में, 35 राज्यों में ये वर्चुअल हियरिंग की सुविधा हमने वीसी के माध्यम से प्रोवाइड की है। तो कंज्यूमर अपना केस भी ऑनलाइन फाइल कर सकता है, वो चाहे तो स्वयं वीसी के माध्यम से अपने केस के बारे में सुनवाई भी कर सकता है। तो ये हमारे इस थीम का, इस वर्ष का महत्व है।
आपने जैसे बताया डिजिटल फाइलिंग, इसी पे मैं जोड़ना चाहूंगी कि इंटरनेट ने हमारे जीवन में आज गहरी पैंट बना ली है और ऑनलाइन शॉपिंग सभी नागरिकों के लिए बहुत ही सुविधाजनक एक विकल्प है। उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए आज जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया। यहाँ मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि पहली बात तो ये डार्क पैटर्न क्या है और आपके विभाग ने डार्क पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई किया, और कृपया आप हमें इन तीनों एप्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें ताकि जो हमारे श्रोता हैं वो किसी भी गलत चीज में फंसने से बच सके।
ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आज हम जान रहे हैं कि सभी लोग अपनी हर एक खरीदारी हम ई कॉमर्स के माध्यम से करते हैं। जब हम ई कॉमर्स के माध्यम से, जहाँ की हमें बहुत सुविधा हो गई, घर बैठे आपको सामान आ जा रहा है, इसी के कारण धीरे धीरे कई नई तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी मार्केट में चलन में आई हैं। उनमें एक प्रैक्टिस को बोला जाता है डार्क पैटर्न। ये डार्क पैटर्न क्या है, आई थिंक मैं आपको श्रोताओं को सबको बताना चाहूंगा। जब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसी ट्रिक यूज करता है कि आप सही से निर्णय ना ले सकें, उनको डार्क पैटर्न कहा जाता है। जैसे कि यदि हम किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जाते हैं, हमें दिखाई देता है आखिरी चार कमरे ही बचे हैं, तो हमें लगता है कि आखिरी ही चार कमरे बचे हैं, जल्दी बुक कर लो नहीं तो ये प्राइस चली जाएगी। यदि ये सही में आखिरी चार कमरे बचे हैं तब तो ये सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। यदि वो चार कमरे हम बुक भी कर लें उसके बाद भी चार कमरे दिखा रहा है, एक डार्क पैटर्न है कि फॉल्स अर्जेंसी के हम शिकार हो गए हैं। कई बार आपके श्रोता भी अनुभव किए होंगे कि किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सब्सक्राइब करना तो बहुत आसान होता है, दो बट क्लिक तीन क्लिक में हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, पर यदि हमें सब्सक्राइब आउट करना है कि हमें उससे ईमेल नहीं चाहिए, हमें उसमें खरीदारी नहीं करना है, आप उसके लिए सब्सक्रिप्शन क्लोज करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल होती है, मिलता ही नहीं है, इसको कहा जाता है सब्सक्रिप्शन ट्रैप डार्क पैटर्न। दूसरी तरह का डार्क पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं ट्रिक क्वेश्चंस। आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा, आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, दोनों ऑप्शन का अर्थ एक ही होगा। तो हमने अपने विभाग में एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेज स्टडी की, हमारे देश में जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की व्यवस्थाएं थी उनको स्टडी की, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से चर्चा की और उन्होंने 10 डार्क पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए। हमने जब ये पेपर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखा तो पब्लिक ने 3 और डार्क पैटर्न्स हमें बता दिए, तो इसलिए हमने अपने रूल्स में 13 डार्क पैटर्न चिन्हित किए हैं। ये वे डार्क पैटर्न है जिससे कि कंज्यूमर को सचेत रहना चाहिए कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कोई खरीदारी कर रहा है तो इनके झांसे में ना आए। शायद भारत विश्व का पहला एक ऐसा देश होगा जिसने डार्क पैटर्न्स को चिन्हित भी किया है और साथ ही साथ रूल्स भी बनाए हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन डार्क पैटर्न्स को ना अपनाए। तो डार्क पैटर्न की समस्या को डील करने के कई चरण हैं। एक चरण है आपने रूल बनाया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसको ना करें, दूसरा चरण है कंज्यूमर्स में अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हम डार्क पैटर्न से बचें। इसके लिए हमने अपने जागो ग्राहक जागो, अपने ट्विटर हैंडल और अपने कई पब्लिसिटी मटेरियल बनाया जो हम स्टेट्स को और कंज्यूमर्स को समय समय पर शेयर करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज है टेक्नोलॉजी। तो हमने भी इसमें डार्क पैटर्न का जो आज हमने ऐप बनाया है, हमने एक डार्क पैटर्न हैकाथॉन कराया था 2023 में BHU IIT के माध्यम से। इसमें देश के करीब 150 से ज़्यादा जो प्रीमियर टेक्नोलॉजी NITs हैं, जो IITs हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन लोगों ने हमें सॉल्यूशंस दिए कि डार्क पैटर्न की हम कैसे पहचान कर सकते हैं किसी ऐप के द्वारा, किसी वेब एक्सटेंशन के द्वारा। इन लोगों ने कई हमें सुझाव दिए, उनमें से हमने 5 जो सबसे प्रमुख सुझाव थे उसको आइडेंटिफाई किया। फिर BHU IIT ने ही इन्हीं 500 सुझावों पर और काम करके ये 3 जो ऐप बनाए हैं, जागो ग्राहक जागो ऐप,
जागृति
ऐप है, जागृति डैशबोर्ड जो है। तो इसमें कंज्यूमर को एक तो जानकारी मिल जाएगी कि आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई इसमें कितने डार्क पैटर्न यूज हो रहे हैं। दूसरा, ये जब रेगुलेटर को दिया जाएगा तो रेगुलेटर उन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक तरह से नजर रख सकते हैं और इनसे आने वाले परिणामों की और जांच करके उन्हें लगता है कि कोई प्लेटफॉर्म ज्यादा डार्क पैटर्न इस्तेमाल कर रहा है तो उसके ऊपर CCPS कार्यवाही कर सकता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और इसमें कंज्यूमर्स को भी एक ऑप्शन दिया गया है कि यदि वो किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी लिंक पर कोई डार्क पैटर्न देखते हैं तो इसके माध्यम से वो CCPA को बता सकते हैं और CCPA उस पर फर्दर एग्जामिनेशन कर सकता है।
कई बार ऐसा होता है कि उपभोक्ता किसी गलत चीज में फंस जाता है, तो ग्रीवांस रिड्रेसल से रिलेटेड आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे? अगर वो किसी ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिसकी आपने अभी जानकारी हमें दी, तो उससे बाहर निकलने के लिए वो ग्रीवांस रिड्रेसल कंज्यूमर कोर्ट्स की कैसे सहायता ले सकते हैं?
मैं आपके श्रोताओं को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, ये किसी भी कंज्यूमर को कोई भी शिकायत है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या उससे किसी कोई उन्होंने सामान खरीदा, तो एक हमारा बहुत ही सुलभ एक नंबर है 1915 या टोल फ्री नंबर है, इसमें वो देश में कहीं से भी डायल कर सकते हैं और 17 भाषाओं में देश की हम इसमें ग्रीवांसेस लेते हैं। यह एक तरह से कंज्यूमर कमीशंस नहीं है, इनफैक्ट कोर्ट ने उनको हम कंज्यूमर कमीशन कहते हैं, तो कंज्यूमर कमीशंस नहीं है, एक प्री लिटिगेशन मेजर है कि आप कोर्ट में जाने से पहले ही अपनी ग्रीवांस का निपटारा कर सकें। तो 1915 पर जब आप शिकायत करते हैं तो ये हमारे जो काउंसलर्स हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में उन शिकायतों को ये दर्ज करते हैं और आपके बिहाफ पर कंसर्न कंपनी से लेते हैं। हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज की तारीख में हमारे पास 1000 से ज्यादा कन्वर्जेंस कंपनीज हैं जो कि NCS से जुड़ी हुई है, तो इनकी जो शिकायतें आती हैं हम सीधा कंपनीज से हम टेकअप कर लेते हैं और फिर जो उनका निपटारा के जो हमारा टाइमलाइन है, जो टाइम शेड्यूल है, हम कंज्यूमर्स को बताते हैं। पर एक तरह से प्री लिटिगेशन मेजर है, कोर्ट से बाहर, कमीशन या कोर्ट से बाहर का। दूसरा जो एक तरीका है, ये कंज्यूमर कमीशंस में केस फाइल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया।
मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आज के दिन 13 प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों ने उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या आप हमें सुरक्षा प्रतिज्ञा के बारे में बता सकते हैं?
हमें जो विचार आया कि हम इनसे एक सेफ्टी प्लेस साइन करवाएं, ये बहुत अच्छा सवाल है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। हमने पाया कि कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी चीजें बिक रही थी जो कि वहां नहीं बिकनी चाहिए, जैसे कि एज पर लॉ आप BIS मार्क यदि प्रेशर कुकर नहीं है तो उसको बेच नहीं सकते हैं, पर नॉन BIS मार्क प्रेशर कुकर बेचे जा रहे थे। इस तरह से कुछ और चीजें भी हमारे संज्ञान में आई, तो उस समय हमने ये विचार किया कि क्यों ना हम एक तरह से सेफ्टी प्लेस, जो चीज कंज्यूमर्स के लिए अनसेफ है उसके लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ना बेचें। एक तरीका था कि वो वॉलंटरी एक प्लेस साइन करें, खुद से ही एग्री करें कि हम जो चीज हम कंज्यूमर्स के लिए हानिकारक है, उनके साथ अनसेफ है, उनकी लाइफ या प्रॉपर्टी तो थ्रेट है, वो हम अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेचेंगे, उसके लिए ड्यू डिलीजेंस करेंगे और वी विल हैव ए प्रॉपर मैकेनिज्म टू इंश्योर का उनका सेल हमारे यहाँ ना हो। तो एक वॉलंटरी प्लेज है, ये एक तरह से उन पर कुछ ऑब्लिगेशंस रखता है, मतलब जो चीजें अनसेफ हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेचेंगे, जो जिनका स्टैंडर्ड्स हैं या जो मानक के हिसाब से नहीं है। दूसरा, यदि आपके यहाँ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे, रेगुलेटर के साथ भी आप शेयर करेंगे। और हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इस सेफ्टी प्लेस को ड्राफ्ट करने से पहले भी हमारी उनसे चर्चा हुई थी और आज 13 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने इसको साइन किया है। तो बेसिकली ये इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एक तरह से कमिटमेंट है कि हम कंज्यूमर सेफ्टी के लिए कमिटेड हैं।
इसी से मैं दूसरे सवाल पे आना चाहूंगी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या फिर भ्रामिक करने वाले विज्ञापन। आपका मंत्रालय ऐसे विज्ञापनों पे काफी सख्त कार्रवाई कर रहा है और हाल ही में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट आप लोगों ने काफी सख्त कदम उठाए हैं।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। ये बेसिकली डेफिनेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मिसलीडिंग फैक्ट्स या गलत तथ्य उनको ना बताया जाए, मतलब एग्जाम जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट हो ऑनेस्ट हो, ट्रुथफुल हो। तो जो कंपनीज या जो एंटिटीज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रही थी उसमें हमने उनको नोटिस भेजी, CCPA में एक्ट में हमारी एक व्यवस्था है जिस तरह से हम कार्यवाही करते हैं। तो हमने ये पाया कि कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अपने बच्चों को, जो लोग वहां से कोचिंग से पढ़कर गए हैं, उनके सक्सेस के बारे में भ्रामक या मिसलीडिंग क्लेम कर रहे थे। हमने ये पाया कि जैसे कि हम जानते हैं UPSC के एग्जाम में 3 स्टेजेज होते हैं, एक प्री होता है, प्रीलिमरी, एक मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होते हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो लोग इंटरव्यू में जिनको कॉल आ जाता था उनको इंटरव्यू के लिए कोचिंग ट्रेनिंग एक दिन की या कुछ घंटों की या कुछ दिनों की देते थे, फिर उनके एडवर्टाइजमेंट आते थे तो उन बच्चों को इस तरह से दिखाया जाता था जैसे कि इन पूरे बच्चों को उन्होंने ही UPSC सिलेक्शन के लिए तैयारी की। हमें उनके विज्ञापन में कोई आपत्ति नहीं है। हमारा ये कहना है यदि आपने उस बच्चे को सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए मान लीजिए ट्रेन किया है तो आप लिख दीजिए ही हैड ओनली टेकन पार्ट इन द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम।
जितना सच है उतना,
जितना सच है बताइए, आप ऑनेस्टली बताइए। आपके एडवर्टाइजमेंट देखने से जो कंज्यूमर है या जो कोई स्टूडेंट है जिसको ये डिसाइड करना है कि हमें कहाँ ज्वाइन करना है, ही गेट्स ए इम्प्रेशन कि तो पूरा प्री या मेंस ही यहाँ से आया। तो एडवर्टाइजमेंट करें, आपका राइट है, बट एडवर्टाइजमेंट शुड बी ट्रुथफुल। हम एक विस्तृत रूप से गाइडलाइंस भी लेकर आए हैं कोचिंग सेक्टर के बारे में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की, उसमें हमने कई प्रावधान किए हैं। एक तो ये है कि आप एडवर्टाइजमेंट में सही सही बताएंगे, और दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये है यदि आप किसी बच्चे का फोटोग्राफ अपने एडवर्टाइजमेंट में यूज कर रहे हैं तो ये उसका कंसेंट आपको उसके सिलेक्शन के बाद लेना है। ये कंसेंट यदि आपने उससे पहले ले लिया है तो कंसेंट वैलिड नहीं माना जाएगा।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई। और श्री अनुपम मिश्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतने विस्तार में सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता सशक्तिकरण और शिकायत निवारण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त सचिव अनुपम मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।